अरुणिमा ने अपने अपने बच्चों के नाम रख दिए थे। उसके बड़े बेटे का नाम आकाश था और छोटे बेटे का नाम अनंत। हालांकि मतलब तो दोनों का आकाश ही था, लेकिन अलग अलग अर्थ के साथ अरुणिमा ने अपने बच्चों के नाम रखे थे। अरुणिमा के बच्चे बिल्कुल ठीक थे, वो एकदम स्वस्थ पैदा हुए थे। दोनों बच्चे बहुत छोटे और बहुत प्यारे दिख रहे थे, बिल्कुल खरगोश के बच्चे की तरह। बच्चों को फीडिंग करने के बाद अरुणिमा ने आकाश को अपनी गोद में ले रखा था और अनंत मिश्री के पास था। मिश्री अनंत के साथ खेल रही थी, तभी दरवाज़ा खुलता है और शारदा जी अंदर आती हैं। शारदा जी को देखकर अरुणिमा का अभी तक जो चेहरा खिला हुआ था वो अचानक से मुरझा जाता है। वो शारदा जी की तरफ देखती तक नहीं है और ना ही कुछ कहती है। शारदा जी उनके पास आती हैं। वो अरुणिमा के गोद में एक बच्चे को देखती हैं और दूसरा बच्चा मिश्री के पास था। शारदा जी उन दोनों बच्चों को देखकर कहती हैं, अरुणिमा, ये बच्चे आस्तिक रायचंद के हैं और ये भी उनके जैसे ही बनेंगे। लेकिन अरुणिमा ने गुस्से में अपनी माँ को देखकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे जैसे ही बनेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे बच्चों के साथ उस आदमी का नाम शामिल मत कीजिएगा। शारदा जी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करती हैं और कहती हैं, अरे नहीं, तुम गलत सोच रही हो, मैं उस तरीके से नहीं कह रही थी, तुम सही कह रही हो, ये बच्चे तुम्हारे ही हैं और ये तुम्हारे जैसे ही बनेंगे। लाओ अपने बच्चों को मुझे दो, मैं भी तो इन्हें प्यार करूं। शारदा जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अरुणिमा की गोद से बच्चे को लेना चाहा, लेकिन तभी आकाश रोने लग गया और अरुणिमा ने आकाश को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, ये रो रहा है, शायद इसे भूख लगी है। शारदा जी के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम आकाश को दूध पिला दो, मैं तब तक अनंत के साथ खेल लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो मिश्री के पास जाती हैं और अनंत को अपने पास लेना चाहती थी, लेकिन अनंत भी रोने लगता है। अनंत को रोता हुआ देखकर अरुणिमा जल्दी से अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, लगता है इसे भी भूख लग गई है, मिश्री इसे मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही अरुणिमा ने अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाना शुरू किया, वैसे ही एक सुकून उसके चेहरे पर उतर आया था। वो महसूस कर रही थी उसके बच्चे जब उसके सीने से लगे हुए थे। ये एहसास सच में बहुत अद्भुत होता है। इतना सुकून अरुणिमा ने अपने पूरे जीवन में कभी भी महसूस नहीं किया था। तभी एक बार फिर से दरवाज़ा खुलता है और आस्तिक के सारे भाई बहन कमरे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर शारदा जी का चेहरा एकदम गुस्से से भर गया था, पर वो इस वक्त कुछ नहीं कर पा रही थी। वो मिश्री को लेकर एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। अरुणिमा उन लोगों को देखती है। वो सब अपने साथ बड़े बड़े खिलौने और बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आए हुए थे। अरुणिमा बच्चों को दूध पिला चुकी थी और अब दोनों बच्चे सो चुके थे। अरुणिमा ने दोनों बच्चों को अपने पास में ही सुलाया था। प्रणाली, कीर्ति और पृथ्वी तीनों अरुणिमा के पास आते हैं और बच्चों को देखने लगते हैं। कीर्ति धीरे से हाथ बढ़ाकर बच्चों के नाक को छू लेती है। उसके आंसू निकल आए थे। कीर्ति अपने पेट पर हाथ रखती है और अपने बच्चे को महसूस करने लगती है। पृथ्वी भी बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था और प्रणाली के चेहरे पर भी खुशी दिख रही थी, क्योंकि इस वक्त बच्चे सो रहे थे, इसलिए कोई भी उसे अपनी गोद में नहीं ले सकता था। जानवी ने अरुणिमा की तबीयत के बारे में पूछा और पृथ्वी ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट में देखा कि उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है और डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अरुणिमा ने उन लोगों को देखकर कहा, आप लोग यहाँ आए हैं, मैंने आप लोगों को मना नहीं किया है, आप लोग बच्चे से मिलना चाहते थे, मिल चुके हैं, लेकिन प्लीज़ आप जो अपने साथ ये तोहफे और खिलौने लेकर आए हैं, प्लीज़ इन्हें वापस लेकर जाइए, मेरे बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी ने अरुणिमा को देखते हुए कहा, ये गिफ्ट हम अपने भतीजों के लिए लेकर आए हैं, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना उनके लिए। लेकिन अरुणिमा ने तुरंत पृथ्वी को रोकते हुए कहा, नहीं पृथ्वी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर किसी भी रायचंद का कोई भी साया पड़े, मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, तुम लोग बच्चे से एक बार मिलना चाहते थे, मैंने तुम्हें मना नहीं किया है, लेकिन आज के बाद मेरे बच्चों से मिलने कभी मत आना। अरुणिमा की बात सुनकर कीर्ति और प्रणाली भी हैरान होते हैं, लेकिन पृथ्वी समझ सकता था कि अरुणिमा ये फैसला किस हालातों में ले रही है। पृथ्वी ने अस्पताल आने से पहले ही सबको समझा दिया था कि अरुणिमा से कोई किसी भी बारे में बहस नहीं करेगा। अरुणिमा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अपने इरादे को नहीं बदलना चाहती है। वो सच में नहीं चाहती है कि आस्तिक का कोई भी भाई या बहन उसके बच्चों से मिले या उसके लिए कुछ करे, वो किसी का एहसान नहीं चाहती है। पृथ्वी, प्रणाली, कीर्ति और जानवी सब दोनों बच्चों से मिलकर वहां से चले जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने साथ गिफ्ट को वापस लेकर जाना ही पड़ा था। उन लोगों के जाने के कुछ देर बाद शारदा जी भी वहां से चली जाती हैं। अरुणिमा ना शारदा जी के आने पर उन्हें कुछ कह रही थी और ना ही उनके जाने पर उनसे कोई सवाल किया। पिछले 3 महीने से अरुणिमा का शारदा जी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार था जैसे कि उनके होने या ना होने से अरुणिमा को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब अरुणिमा जल्द से जल्द रिकवर करके अपने घर वापस जाना चाहती थी, क्योंकि उसने कुछ सोच रखा था और बस वो अपने बच्चों का इस दुनिया में आने का ही इंतजार कर रही थी। 1 हफ्ते बाद आस्तिक पागलखाने के अपने कमरे में था। उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। आस्तिक ने एक पत्थर के टुकड़े से दीवार पर 2 छोटे-छोटे बच्चों की ड्राइंग बनाई और उसे देखकर खुश होने लगा। वो कल्पना करने लगा कि दीवार पर उसी के बच्चे हैं।
वो जोर जोर से ताली बजाते हुए अपने बच्चों से कहता है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, तुम दोनों को लड़ना नहीं है, दोनों भाई अच्छे से रहो, तुम्हें एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, तुम एक दूसरे को चोट लगा लोगे। तभी आस्तिक के कमरे का दरवाजा खुलता है और एक स्टाफ अंदर आते हुए आस्तिक के पैरों में लगी हुई जंजीर को खोल देता है। आस्तिक ने अस्पताल स्टाफ से पूछने तक की जहमत नहीं की, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसके कमरे में कौन आता है और क्या करता है। वो बस दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग बनाकर ही खुश हो जाया करता है, या फिर उसे एक खिलौने के बच्चे को लेकर उससे बातें किया करता है। आस्तिक की जंजीर खोलने के बाद उस अस्पताल स्टाफ ने कहा, एक औरत तुमसे मिलने आई है। अरुणिमा आई है, अरुणिमा मुझसे मिलने आई है, देखा मैंने कहा था ना, अरुणिमा मुझसे मिलने आएगी, वो मुझसे मिलने जरूर आएगी, आस्तिक बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला। फिर आस्तिक दीवार पर बने उस बच्चों की ड्राइंग को देखकर कहता है, बच्चों तुम्हारी मम्मी आई है मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम दोनों आपस में लड़ना मत।